पे थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना की पहली पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है संगति। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में सम्मिलित हों, सुनते हैं कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पहला यूहन्ना की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा कि पाप तो व्यवस्था के पहले ही था, परंतु व्यवस्था के आ जाने से वह पाप विरोधी हो गई। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम फिर से आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, आपके वचन में से सीखते हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा आप हम सबसे बोले, बातचीत करें, हमें समझाएं, सिखाएं, ताकि हम अपने जीवन में और आगे बढ़ने पाएं, आपकी महिमा करने पाएं। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पाप तो व्यवस्था के पहले ही से था, परंतु व्यवस्था आ जाने से वह पाप विरोधी हो गई, वह पाप को प्रकट करने लगी। प्रभु यीशु ही था जो पाप हरण करने के लिए आया था, क्योंकि वह व्यवस्था के अनुसार निष्कलंक और निर्दोष था। जो प्रभु यीशु को ग्रहण करता है वह पाप नहीं करेगा, और यदि चूक गया तो पाप ही में पड़ा नहीं रहेगा, वह तुरंत उठकर अपने स्वर्गीय पिता के पास लौट आएगा, जैसे उड़ाव पुत्र, क्योंकि उसमें पिता के गुण हैं। धर्म के काम करने वाला परमेश्वर की धार्मिकता में है और पाप करने वाला शैतान का है। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और आज के अध्ययन में हम पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 8 पद से पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। यहां पर ध्यान दीजिए, लिखा है जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। मेरे मित्रों, हमें यह जान लेना है कि शैतान सब पाप का मूल है, स्रोत है। संसार में पाप लाने का उत्तरदायी वही है। उसी ने हमारे प्रथम माता पिता को पाप में बहकाया था। आज हम में जो पाप का स्वभाव है वह शैतान के कारण ही है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 44 पद में प्रभु यीशु ने धर्म गुरुओं से कहा था, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है, हम अपने पिता के समान हैं। यदि शैतान हमारा पिता है तो आपका व्यवहार उसके जैसा होगा, और यदि आपका पिता परमेश्वर है तो आप में ईश्वरीय स्वभाव है और आप उसके अनुसार काम करेंगे। यहां पर लिखा है, शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। जी हां, उसी ने पाप का आरंभ किया और वह आरंभ से आज तक पाप करता है। वह परमेश्वर के विरुद्ध है। तब लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु ही है जो आपको मुक्ति दिला सकता है। उसी के पास आप आ सकते हैं, मेरे पास ना आए, क्योंकि मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, न ही कोई और आपकी सहायता कर सकता है। वह एक महान वैद्य है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी समस्या के साथ समाधान हेतु उसी के पास जाएं। प्रभु यीशु जगत के पापों के लिए मरा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 29 पद में, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। उसने हमारे पाप के दंड को उठा लिया। प्रभु यीशु में विश्वास लाने पर आपके पाप पीछे रह गए और आप उसमें उद्धार प्राप्त हैं, क्योंकि आपने उसमें विश्वास किया है। इसलिए आपके पापों को अब सामने नहीं लाया जाएगा। यूहन्ना कहता है कि प्रभु यीशु ने हमारे पाप ही नहीं उठाए, वह हमारे पापों को हरने के लिए प्रकट हुआ है। उसमें पाप नहीं था, उसमें पाप का स्वभाव ही नहीं था। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। मेरे प्रियो, वह एक मनुष्य था जो हमारे लिए पाप बलि बनकर मरा और हमारे पाप का दंड चुकाया। परंतु पद 5 में यूहन्ना कहता है, वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। दूसरे शब्दों में, वह इसलिए मरा कि हम मसीही जीवन जीने के योग्य हो जाएं। मेरे मित्रों, अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं जो पद 4 से पद 24 में है। प्रत्येक विश्वासी के दो स्वभाव हैं। रोमियो की पत्री अध्याय 7 में पौलुस इसी विषय पर सविस्तार चर्चा करता है और पद 19 में वह लिखता है, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता वही किया करता हूं। नया स्वभाव अच्छा काम करना चाहता है, परंतु पुराना स्वभाव पांव खींचता है। रोमियो की पत्री ही के अध्याय 8 पद 7 और 8 में पौलुस लिखता है, शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। नया जन्म पाए बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना संभव नहीं है। पद 9 में कहता है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यहां मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूहन्ना मसीही विश्वासियों को संबोधित कर रहा है। वह कलीसिया के सदस्यों से नहीं, बपतिस्मा लेने वाले सब मनुष्यों से नहीं कह रहा, वह नया जन्म प्राप्त विश्वासियों से कह रहा है। प्रभु यीशु इसलिए आया कि शैतान के कामों को नष्ट करे, कि हमारे लिए परमेश्वर के निमित्त जीना संभव हो जाए। तब वह आगे कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री 3:9 में यहां पर लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। मेरे मित्रों, यहां पर वह कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है, यह नया जन्म है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। यूहन्ना 3:7 में प्रभु यीशु ने यहूदियों के सरदार निकोदेमुस से यही कहा था, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता है। परमेश्वर की संतान में नया स्वभाव होता है और नया स्वभाव पाप नहीं करता है। उड़ाव पुत्र सुअरों में नहीं रह पाया, क्योंकि वह सुअर नहीं था। वह पिता का पुत्र था और अपने पिता के पास लौट जाना चाहता था। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप पिता के घर में रहना चाहेंगे, आपको उसी की लालसा होगी, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता है। दुर्भाग्य से यहां कुछ भ्रम होता है। यहां एक ही पाप की बात नहीं है, कहने का अर्थ यह है कि वह पापों में नहीं रहता है। 2 यूहन्ना ने कहा था कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक उपस्थित है। विश्वासी पाप तो करेगा, परंतु परमेश्वर की इच्छा है कि वह अर्थात हम पाप रहित जीवन जिएं। 1 यूहन्ना 2:1 में यूहन्ना कहता है कि उसके लिखने का उद्देश्य है कि हम विश्वासी पाप ना करें। पाप परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध है, परंतु यदि हमसे पाप हो जाए तो पिता परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है। 1 यूहन्ना 1:9 में वह लिखता है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जी हां, यूहन्ना कहता है कि विश्वासियों के लिए पाप करने की संभावना बनी रहती है। अतः जब वह कहता है जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, तो उसके कहने का अर्थ है कि नया स्वभाव किसी भी स्थिति में पाप में नहीं रहेगा, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। आप परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए आप में परमेश्वर का स्वभाव है। वह पाप कर ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। यूहन्ना किसी वास्तविक बात का उल्लेख कर रहा है। वह आपके द्वारा कभी आंसू बहाकर अंगीकार करने की चर्चा नहीं कर रहा है। प्रश्न यह है, क्या आप परमेश्वर से जन्मे हैं? मैं विश्वासियों की सुरक्षा और पाखंडियों की असुरक्षा में विश्वास करता हूं। अतः हमारे लिए अच्छा होगा कि अपने जीवन का अवलोकन करें और देखें कि हम विश्वास में हैं या नहीं। क्या आप वास्तव में परमेश्वर की संतान हैं? क्या आप परमेश्वर की बातों की लालसा करते हैं? यही एक महत्वपूर्ण बात है। किसी समलैंगिक के लिए आप कह सकते हैं कि वह परमेश्वर की संतान नहीं है। वह परमेश्वर की संतान हो सकता है और परमेश्वर की संतान होने के कारण वह पाप नहीं करेगा। उड़ाव पुत्र सुअरों में नहीं रहेगा। वह कहेगा, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। उसका पिता सुअरों के बाड़े से बहुत दूर रहता है। मेरे मित्रों, जो कोई पिता से जन्मा है वह पाप नहीं करता और न ही करता रहता है। नया स्वभाव पाने पर हमारा पुराना स्वभाव समाप्त नहीं हो जाता है। अतः पौलुस अर्थनाद करता है रोमियो की पत्री 7:24 में, मैं कैसा अभागा मनुष्य हूं, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा, केवल परमेश्वर का आत्मा आपको बचा सकता है। यदि आप अपने आप को असहाय और आशा रहित पाते हैं, यदि पाप आपको दास बनाए हुए है और आपके जीवन को नष्ट कर रहा है, आपसे आनंद छीन रहा है, शांति छीन रहा है, आप बेचैन हैं, तो मैं कहता हूं प्रभु यीशु आपको बचा लेगा। वह आपको बचा सकता है यदि आप उस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं, प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, उससे वास्तविक व्यवहार रखना चाहते हैं, तो वह आपके साथ निभाएगा, आपके साथ रहेगा। उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जी हाँ, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, अर्थात वह पाप में पड़ा नहीं रहता है। 1 यूहन्ना 3:10 में इस प्रकार से लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता है। लिखा है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। मेरे विचार में हमें अधिक प्रकाशन की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर की संतानों में से अनेक जन अनाथों जैसे लगते हैं। संसार में दो परिवार हैं, परमेश्वर का वैश्विक पितृत्व और मनुष्य का वैश्विक मातृत्व। एक झूठी शिक्षा है। बाइबल में कहीं नहीं कहा गया है कि परमेश्वर सबको अपनी संतान मानता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:44 में प्रभु यीशु ने धर्म गुरुओं को शैतान की संतान कहा था। किसी ने कहा था कि विश्वासी को अविश्वासी से विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने ससुर से परेशानी हो सकती है। जी हाँ, यह अति सत्य है। परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान इस पृथ्वी पर दो ही परिवार हैं। यूहन्ना हमें बताएगा कि दो बातें परमेश्वर की संतान की पहचान है। परमेश्वर हमारे मन को जानता है और जानता है कि हमारा नया जन्म हुआ है या नहीं, कि हम उसकी संतान हैं या नहीं। परंतु हमारा पड़ोसी नहीं जानता है। वह हम में परमेश्वर के जीवन को देखकर ही कह सकता है। आवश्यक नहीं कि हमारे शब्द और हमारी भाषा इसे प्रकट करे, परंतु हमारे जीवन इसे प्रकट करते हैं। मेरे घर के पास में एक बगीचा है। बगीचे में एक पेड़ है जिसमें मैंने अच्छी जाति की कलम लगाई है। अभी वह मेरे सिर तक ही ऊंचा हुआ। मुझे उसकी जंगली टहनियों को काटने और उसको छांटने की आवश्यकता पड़ी कि अच्छी कलम बढ़ती जाए। जब मैं व्यस्त होता हूं तब वह बढ़ जाती है और उसमें जंगली फल लगते हैं। वह पेड़ दो प्रकार के फल लाता है। यह मेरी इच्छा है कि मैं कौन सा फल पाना चाहता हूं। मेरे मित्रों, मैं भी उस वृक्ष के समान हूं। मुझ में दो प्रकार के फल लगते हैं। मैं नीचे स्तर पर भी जी सकता हूं, जो मेरा पुराना स्वभाव है। हम सब में यह पुराना स्वभाव है। हम इस जीवन में इससे मुक्ति कभी भी नहीं पा सकते। और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परंतु इससे ऊपर मेरे नए स्वभाव में प्रेम, आनंद, शांति तथा धीरज के फल लगते हैं। आज मैं अच्छा हूं और मुझ में प्रभु का आनंद है, परंतु कल आप मुझे कूड़े के ढेर में देखेंगे जहां मुझे नहीं होना है, परंतु ऐसा हो जाता है और ऐसे में मैं अपने पुराने स्वभाव में आ जाता हूं। गलातियों की पत्री में पौलुस विश्वासियों से कहता है कि वे आत्मा में आचरण करना सीखें, जो आपकी क्षमता का व्यवहार नहीं है। आप अपने आप में ऐसा नहीं कर सकते। रोमियों की पत्री अध्याय 7 में पौलुस ने दो बातें देखी, पुराने स्वभाव में कुछ अच्छा नहीं है और नए स्वभाव में सामर्थ नहीं है। आपको सहायता की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आप जो भी हो, आपके लिए मसीही जीवन जीना संभव नहीं है। यह केवल आप में क्रियाशील परमेश्वर के आत्मा से है कि आप अच्छा फल लाएं जो परमेश्वर आपसे चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 1 और 2 पद में प्रभु यीशु कहता है, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और अधिक फले। वह कहता है कि हम फल लाएं, और इस कारण वह हमें छांटता है। हम अपने पुराने स्वभाव में भी फल लाते हैं। ये फल अच्छे नहीं है। हम उन पर गर्व नहीं कर सकते। इसलिए यूहन्ना कहता है, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। वे फलों से ही पहचाने जाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। डॉक्टर जेम्स मैकगिनली कहा करते थे, मैं आपका न्याय तो नहीं करता, परंतु मैं फलों का निरीक्षक हूं। हमें विश्वासियों के फलों को देखना है। पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय के 10 पद में यूहन्ना परमेश्वर की संतान की दो मुख्य पहचान बताता है। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर की ओर से नहीं। आप प्रभु यीशु का मौखिक अंगीकार करते हैं, आप सेवक हैं, आप कलीसियाई गतिविधियों में अति व्यस्त हैं, परंतु यूहन्ना कहता है जो धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं। यह एक कठोर बात है, परंतु आत्मा कहता है। लिखा है, ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यह विश्वासी की दूसरी पहचान है। क्या आप विश्वासियों से प्रेम करते हैं? यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, तो आप अन्य विश्वासियों से प्रेम करेंगे। इस पत्री में प्रेम शब्द बार बार आता है, अतः आरंभ ही में हम इसकी उचित समझ को प्राप्त करें तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरे मित्रों, यहां पर हम सब देख रहे हैं कि इस संसार में दो परिवार है, एक शैतान का परिवार और दूसरा परमेश्वर का परिवार। अब मुझे और आपको देखना है कि हम किस परिवार से हैं। आप अपने स्वयं के जीवन को जांच करके देख सकते हैं कि आपके कार्य किस प्रकार के कार्य हैं। यदि आपके कार्य बुरे हैं और आप उन कार्यों को कर रहे हैं जिसे करना आपके लिए उचित नहीं है, तो निश्चय जानिए कि आप शैतान के परिवार से हैं। परंतु यदि आपका नया जन्म हो गया है और आप धर्म के काम करते हैं, भले काम करते हैं, तो निश्चय जानिए कि आप परमेश्वर के परिवार से हैं। मेरे मित्रों, आज के इस वचन के प्रकाशन ने हमें इस बात का स्पष्टीकरण दे दिया है कि हम इस संसार में हैं और इस संसार में दो परिवार के लोग पाए जाते हैं, परमेश्वर के परिवार के संतान और शैतान के संतान। अब हमें स्वयं से चुनाव करना है कि हम किस परिवार में रहना चाहते हैं, और यह भी देखना है कि हमारा जीवन किस परिवार में जीने के लायक है। यदि आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की संतान बने, तो आपको उसके पास आना होगा। जी हाँ, वचन में लिखा है कि हमारे अंदर दो स्वभाव हैं, एक पुराना स्वभाव, एक नया स्वभाव। जब आप परमेश्वर को अपने जीवन में आने देते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो आप नया स्वभाव पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, और आप धीरे धीरे उसकी संगति में बढ़ते हैं। और यही कारण है कि आप पाप तो करते हैं परंतु उसमें पड़े नहीं रहते, परंतु जो शैतान के संतान हैं वे पाप में ही पड़े रहते हैं। मेरे मित्रों, आज हम सब के लिए यह अति आवश्यक है कि हम इन बातों को बड़ी गंभीरता से लें। हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपरा नहीं, हमारे व्यवहार, हमारे व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर की दृष्टि में कैसे हैं, इसको हमको पहचानना है। आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को जांचें, प्रभु के हाथों में सौंपें और प्रभु से कहें कि पिताजी, आज तक मैंने इस बात को नहीं समझा, परंतु आज मैं जान गया हूं कि मैं किस परिवार से हूं। मैं अपने आप को देख रहा हूं कि मैं कहां पर हूं। मेरे रास्ते गलत हैं, मैं भटक गया हूं, परंतु मैं आपकी ओर आना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। जी हां, जब आप प्रभु से मांगेंगे, निश्चय जाने कि वह आपके हाथों को थाम लेगा, आपकी सहायता करेगा, आपको मुक्ति देगा। आज मौका आपके पास में है। यहां पर हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आप एक सही निर्णय के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि प्रभु आपके साथ है, वह आपकी अवश्य ही सहायता करेंगे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मेरी मंजिल हो तुम ही हम सफर हो, तुम ही हो राह, चलता रहो मैं तुझ में प्रभु। मेरी मंजिल हो तुम,